आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, मेरा नाम है नियति और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की इंग्लिश किताब की एक बहुत ही वंडरफुल पोएम जिसका नाम है नो मैन आर फॉरेन। सो कविता शुरू करने से पहले मैं रोज की तरह से आपको बताऊंगी कि फॉर्मेट क्या होगा हमारे इस आज के पढ़ाई का, इस पोएम को पढ़ने का। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम ये पूरी पोएम पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको ब्रीफ समरी बताऊंगी पोएम की, उसके बाद हम डिफिकल्ट वर्ड्स कुछ आंसर्स उसके जानेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स का मतलब समझेंगे। उसके बाद जो है मैं आपको स्टेंजा बाय स्टेंजा हर पैराग्राफ का मतलब समझाऊंगी। उसके बाद नीचे जो बहुत ही इजी सवाल दिए गए हैं उनके हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। नो मैन आर फॉरेन। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन? We have many ways of thinking other people as different from us as them. They may belong to a different country or speak a different language. In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same, for we are all human. Remember, no men are strange, no countries foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like us, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvests, by war-long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read, a labor not different from our own. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love in every land is common life that all can recognize and understand. Let's remember whenever we are told to hate our brothers, it's ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other, it is the human earth that we defile, our hells of fire and dust outrage the innocent. Innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries strange. लिखी गई है जेम्स किरकप ने। ओके, तो हम अब क्या करेंगे, जो डिफिकल्ट वर्ड्स नीचे दिए गए हुए मेंशन किए हैं उनका हम मतलब जानने की कोशिश करेंगे। डिस्पोजेस का मतलब है डिसलॉज या फिर डिप्राइव या फिर किसी भी इंसान को वो चीज ना देना या फिर ना मिलना। डिफाइल का मतलब है मेक डर्टी या फिर पल्यूट, यानी कि किसी भी चीज को गंदा करना। आउटरेज ऑफ इनोसेंस ऑफ मतलब वॉयलेट द प्योरिटी ऑफ, मतलब किसी भी चीज की जो प्रॉपर प्योरिटी होती है उस चीज की या फिर सभ्यता होती है उसको डिस्ट्रॉय करना। ये भी कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है बीच बीच में, उनको भी मैं आपको एज एंड वेन जैसे जैसे पोएम हम पढ़ेंगे ना उस तरह से मैं आपको उसको उन सबका मतलब समझाऊंगी। ओके, और अब हम देखते हैं प्रॉपर पूरे कविता की समरी क्या है। मैं हिंदी में प्योर मतलब सिंपल हिंदी में आपको समझाऊंगी कि इस पूरे पोयम का एसेंस क्या है, इनकी क्रक्स क्या है। ओके, तो बच्चों कविता कहती है, केंद्रीय विचार यह है कविता का कि लोगों के बाहरी रूप, धर्म, क्षेत्र इत्यादि पे हमें आधार पर नहीं देखना चाहिए। किसी भी इंसान को हमें इन सारी चीजों को लेके नहीं देखना चाहिए। पूरे संसार में हम सारे लोग आपस में भाई भाई हैं, मतलब हम इंसानी है ना। मतलब अगर आप चाइना के लोग देखो दिखने में वो लोग अलग दिखते हैं, अफ्रीका के लोग देखो वो भी दिखने में अलग दिखते हैं, या फिर अमेरिका के लोग देखो, आपने टीवी वगैरह पे सब देखा होगा राइट। तो वो लोग दिखने में अलग अलग दिखते हैं वैसे हमारे में से, बट अगर हम वास्तव में अगर हम देखे जाए तो क्या उनके दो आंख नहीं है, उनकी दो पांव भी है उनके, है ना, दो आंखें, दो पांव, दो हाथ, मतलब कि मोस्ट ऑफ द चीजें हैं वो दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। फिर भी हम दुनिया में देखते हैं कि बहुत तरह के भेदभाव, इनइक्वालिटी जो है वो दुनिया में हमें देखने को मिलती है। ओके, सभी लोग समान रूप से जन्म लेते हैं, है ना। मतलब जब आपने जन्म लिया होगा या फिर हमने जब जन्म लिया होगा तब हम जैसे सारे लोगों की तरह से हम जन्म लेते हैं बिना कपड़े पहने, है ना। हम सारे लोग जैसे शुरुआती दिनों में जैसे खाना खाते वैसे ही हम खाना खा के जीते हैं जिंदा रहने के लिए, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि मुझे जिंदा रहने के लिए कुछ और चीजों की जरूरत है, आपको जिंदा रहने के लिए कुछ और चीजें आप खाते हो, ऐसी तो बात नहीं है ना। और एक बात भी सिंपल है, मतलब इक्वल है हम में, वो ये है कि हम सबको एक ना एक दिन इस पृथ्वी को, इस संसार को छोड़कर जाना है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसा भाई, एक ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको ये पता होगा कि कभी उसकी मृत्यु आ ही नहीं सकती, ऐसा तो नहीं होता है ना। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम सारे लोगों के शरीर है वो भी समान है, इनकी दो आंखें, दो कान, एक मुंह, एक जीभ है ना, लेकिन हम में भी, हमने ही आपस में झगड़ कर और विद्वेष फैलाकर पृथ्वी में समरसता को खराब किया है। समरसता का मतलब क्या है बच्चों, की जो इक्वालिटी है वो हमने खराब की है। हमने क्या किया है, हमने हर इंसान को जाति, रेस या फिर धर्म के नाम पे हमने बांटा है। अगर हम दुनिया के, चलो छोड़ो हम दुनिया का एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, हम क्या करते हैं हमारे आस पड़ोस का ही एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। अब आप देखोगे कि जैसे आप हो, आपके बगल में जो व्यक्ति बैठा है, जो स्टूडेंट बैठा हुआ है, आप उसको डिफरेंट जानते हो, क्यों? शायद उसका धर्म अलग होगा, या फिर उसकी जाति अलग होगी, या फिर वो दिखने में अलग होगा आपसे, है ना, स्किन कलर डिफरेंट होगा, या फिर बाकी चीजें, मतलब बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। बट ऐसा नहीं होता यूजुअली, है ना, क्योंकि आपको, जैसे कि मैंने बहुत सारी अब चीजें बताई हैं कि जन्म लेते वक्त आपने, मतलब आप जैसे आपने जन्म लिया वैसे भी उनने भी जन्म लिया, आप जैसे चीजें खाते हो वैसे भी वो भी खाते हैं, आप भी कपड़े पहनते हो वो भी कपड़े पहनते हैं, अब और जब आप चले जाओगे तो भी आप दोनों, मतलब दो इंसान अगर हम कंपेयर करेंगे तो एक ही तरीके से वो लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं, है ना। तो ऐसी डिफरेंसेस जो हैं वो बस हम इंसानों ने खड़ी की गई हैं अपने आप में, और जो शांति है दुनिया की, मतलब जो पीस जो है दुनिया का, वो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है ना। ये जो पूरे कविता का ये केंद्रीय विचार है। अब जान लेते हैं कविता का सार क्या है, यानी कि कविता की ये समरी क्या है। तो बच्चों ये जो कविता है ना कि नो मैन आर फॉरेन, वो कहती है कि सभी जो इंसान है वो एक समान है, और इस कविता में कवि ये कहते हैं कि पृथ्वी की सभी मानव एक दूसरे के भाई है तथा एक दूसरे से वो समानता रखते हैं। हम सभी को धूप, हवा, पानी और शरीर को ढकने के लिए कपड़े की भी आवश्यकता पड़ती है ना, और सभी एक दूसरे की तरह धरती पर ही चलते हैं। खेती से हम लोग भोजन हमको मिलता है तथा मृत्यु के पश्चात हम समान रूप से जमीन में दफनाए जाते हैं, है ना। हम समाय हम जो है इस सारे के सारे सेम कार्य करते हैं, मतलब समान कार्य करते हैं, ओके। और हम सब पृथ्वी पर सोते हैं और उठते भी हैं, एक दूसरे से हम बहुत ही अफेक्शनेटली बातें भी करते हैं, और तो और जब हम एक किसी इंसान के साथ बहुत ही अच्छे से बर्ताव करते हैं तो हम अपेक्षा भी रखते हैं कि सामने वाला इंसान भी उसी तरह से हम हमारे साथ बर्ताव करे, है ना। हम एक दूसरे से घृणा भी करते हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ा भी करके हमने अभी पृथ्वी का जो समरसता है, पृथ्वी की जो इक्वालिटी है, जो पीस है पृथ्वी का, इस दुनिया का, इस संसार का, वो हमने डिस्ट्रॉय कर रखा है। हम ही उस वायु को प्रदूषित करते हैं जिसके कारण हम सांस ले पाते हैं। अगर आप देखो कि इंडस्ट्रीज होती हैं, या फिर हम पेड़ पौधे कट करते हैं बहुत सारे लोग, है ना। तो जो चीज हमें चाहिए, जिस, मतलब आप ऑक्सीजन कहते हो जिसको आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में, है ना, में हम कहते हैं प्राणवायु, तो जो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस, जिसकी हम जरूरत, जरूरी है हमें जिंदा रहने के लिए, उसको भी हम डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इस प्रकार से ह्यूमन जो है, या फिर इंसान ने इतना ज्यादा ह्यूमन, मतलब आप कह सकते हो इनसेंसिटिव हुआ है कि उसको पता ही नहीं चल रहा कि वो अपने साथ क्या कर रहा है, या फिर अपने आसपास में लोग हैं उनके साथ क्या कर रहा है ना। तो वायु को प्रदूषित करने से करने के क्रम में हम इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि इसका दूसरों पर भी बुरा प्रभाव क्या पड़ेगा। हम बस क्या करते हैं, बस अपने बारे में सोचते हैं कि हाँ भाई, मुझे किस प्रकार से अच्छे से कोई चीज को एंजॉय करना मिले करने को मिलेगा, है ना। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, हमारे जो जो मेन चीजें हैं हमारे लाइफ में, तो उसको हम इग्नोर करके, जो परमानेंट चीजें नहीं है उनके पीछे हम दौड़ भाग करते हैं, और इस सबसे क्या करते हैं, हमारा जो पूरा जो संसार है उसकी समरसता को हम बिगाड़ के रखते हैं, ओके। तो अब चलते हैं बच्चों स्टैंडा बाय स्टैंडा, मतलब समझने की पोयम का। फाइन, शुरू करते हैं। नो मैन आर फॉरेन, रिमेम्बर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रेथ्स, लाइक आज द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शाल लाई। सो इन दिस पर्टिकुलर स्टेंजा द पोएट इज एड्रेसिंग ऑल ऑफ अस, मतलब पोएट जो है वो हम सबको ये बातें कह रहे हैं। इट टेल्स अस टू रिमेम्बर नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज फॉरेन, मतलब कि कोई भी इंसान स्ट्रेंज नहीं है और कोई भी कंट्री ऐसी नई सी नहीं है, अनजान नहीं है. ओके, ही सेज नो वन इज डिफरेंट फॉर अदर, अंडर ऑल यूनिफॉर्म्स वी हैव बॉडी विच ब्रेथ सिमिलरली. मतलब कि कोई भी इंसान ऐसे अलग से नहीं है, हमारे अंदर मतलब हमारे भीतर जो है हम इक्वली, हम एक ही तरीके से सांस लेते हैं और सांस लेना ही हमें जीवित रखता है. ऐसा नहीं है ना कि कोई एक इंसान है जो सांस ले नहीं था फिर भी वो जीवित है, ऐसी बात तो नहीं होती, राइट? सो इट मीन्स द सेम. ओके, टू से वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल डिस्पाइट ऑफ आर डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट कल्चर. यानी कि पोएट हमें कहें कि हम लोग सारे लोग जो हैं वो एक ही हैं, हमारा कल्चर भले ही कितना ही डिफरेंट क्यों ना हो. जैसे कि अगर आप हम देखें, अगर बड़े स्तर पर अगर हम डिफाइन करने लगे, तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल दिया था, आप अगर चाइना में चले जाएं तो वहां पे उनका कल्चर बहुत ही डिफरेंट है. आप कोरिया में जाओगे, उनका डिफरेंट है कल्चर. आप इंडिया में यानी कि हमारे प्यारे भारत में जब आप आओगे तब यहाँ का कल्चर डिफरेंट है. इतना ही नहीं, आप अगर भारत का ही अगर आप देखो तो हर राज्य में कल्चर डिफरेंट है. चलिए खैर छोड़िए, राज्य की छोड़िए, नॉर्थ इंडिया में जो है कल्चर डिफरेंट है साउथ इंडिया से, है ना? प्रत्येक राज्य जो है, हर एक राज्य डिफरेंट है. राज्य को छोड़िए, चलिए अपने स्टेट में ही अगर हम देखें, अपने ही राज्य में अगर हम देखें, तो एक जिला जो होता है उसके जो तौर तरीके होते हैं, उसका कोई भी उनकी कल्चर होती है, एथनिसिटी होती है, वो डिफरेंट होगी आपके तरह से, है ना? तो चलिए, अगर हम जिला तो खैर फिर भी बड़ा है, हम आपस में अगर हम देखें तो एक धर्म का इंसान जो है उसका कल्चर डिफरेंट होगा, बट उसके पड़ोस में जो पर्सन रह रहा होगा उसका कल्चर डिफरेंट होगा, उसके खाने के तौर तरीके डिफरेंट होंगे, है ना? ऐसा ही नहीं बल्कि डिफरेंट मतलब ईच जाति जो है वो भी डिफरेंट है. मतलब ये जाति जो है तो खैर हमने ही बनाई है, बट फिर भी जो डिफरेंसेस हैं वो ऐसे हमें दिखते हैं. पर अगर आप ओवरऑल तरीके से अगर हम सोचे ना, तो हर इंसान बस एक तरीके से है, क्योंकि भगवान ने हमें बनाते वक्त, हमें हम इंसानों को जन्म देते वक्त हम में कोई भी डिफरेंसेस उन्होंने करके नहीं भेजे थे, है ना? जब कोई बच्चा न्यू बॉर्न जब जन्म लेता है तो हमको थोड़ी ना पता होता है कि वो हिंदू है, मुसलमान है, कौन है, कहाँ से है वो, है ना? ये तो बस ये जो सारे जो डिफरेंसेस है वो हम इंसानों ने किए गए हैं, और ये इतने ज्यादा बुरे हैं बच्चों कि हम इन डिफरेंसेस ने हमें लड़ाइयां करने में, हमें एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ने में मजबूर किया है. ओके, तो चलते हैं आगे. द लैंड ऑन विच अ मैन ऑफ अदर कंट्री वॉक्स इज सिमिलर टू अर्स. इट इज द सेम अर्थ, इट इज द सेम अर्थ इन विच वी ऑल विल गेट बरिड आफ्टर डेथ. यानी कि हमारे पोएट हमें कह रहे हैं बच्चों कि भले ही हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रहते हो, भले ही हमारे खाना खाने का तरीका, हमारे कल्चर डिफरेंट हो, या फिर हम पहनने के हमारे तौर तरीके, कपड़े पहनने के डिफरेंट हो, अलग हो, पर जब हम मर जाएंगे, मृत्यु जब हमें आ जाएगी, तब हम एक ही तरीके से हम लोग जो है मृत्यु को प्राप्त करेंगे, है ना? यानी कि हर हर इंसान का मृत्यु से मिलना तय है. ये जो है वो बॉटम लाइन है, ये कॉन्टेक्स्ट है इस पर्टिकुलर स्टैंडा का, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का. आते हैं स्टैंडा नंबर टू पे. तो स्टैंडा टू हमें कहता है, पहले हम रीड करते हैं इसको. दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वॉटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड देयर हैंड्स आर आवर्स एंड देयर लाइंस वी रीड द लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन. तो यहाँ पे द अदर पीपल आर ऑल्सो अवेयर ऑफ सन एयर एंड वॉटर एंड दीज आर द लाइफ सोर्सेस फॉर देम टू. यानी कि जिंदा रहने के लिए बच्चों हमें सूरज की रोशनी चाहिए होती है, सांस लेने के लिए हवा चाहिए होती है, और पानी भी हमें हमारी प्यास बुझाने के लिए चाहिए होता है. अब आप मुझे बताओ कि भले आपके पड़ोस में जो इंसान है, आप जहाँ पे बैठे हो वहां पे आपके पड़ोस में जो भी इंसान बैठा है, या फिर आपके घर में जो आपके पड़ोसी है, आपके घर से जो पास में रहते हैं वो, चलिए हम लोग एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि वो अलग है आपसे, पर आप मुझे ये बताओ, क्या जिंदा रहने के लिए उनको सूरज की किरणें नहीं चाहिए होती हैं? क्या उनको जिंदा रहने के लिए वो हवा नहीं यूज करते? क्या पानी वो नहीं यूज करते? भले ही खाना आप लोगों का डिफरेंट डिफरेंट हो, पर जिंदा के रहने के लिए उनको खाना भी तो खाना पड़ता है ना? तो ऐसा कोई इंसान तो होगा नहीं कि जो खाना खाए बगैर जिंदा रहता है ना? तो यही कविता पोएट जो है वो हमें इस कविता में कहना चाह रहे हैं. दे ऑल्सो आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट. यानी कि खाना खाने के लिए भी उनको जो खेतों में जो खाना होता है वो भी उनको अच्छे से बनाना पड़ता है, ताकि वो अपने आप को जीवित रख सके उस खाने के सहारे, है ना? दे हैव ऑल्सो स्टार्व्ड बाय लॉन्ग विंटर्स एंड वॉर्स, यानी कि यहाँ पे मतलब जो लाइन टू लाइन अगर मैं आपको मतलब बताने जाऊं तो पोएट हमें कह रहे हैं कि वो लोग जो हैं आपके पड़ोस में जो भी रहने वाले लोग होंगे उनको भी, उन्होंने भी डिफिकल्ट स्टार्व बाय लॉन्ग विंटर वॉर, मतलब विंटर में जब वॉर होते हैं या फिर जब लड़ाइयां होती है तब वो भी लोग भूखे रहे होंगे। तो इसका मतलब है ये बच्चों कि डिफिकल्टी लेवल जो है मतलब परेशानी की जो लेवल है वो सबको एक ही तरीके से आती है। ये नहीं कि आपके लाइफ में ज्यादा डिफिकल्टी हो, दूसरों के लाइफ में कम डिफिकल्टी हो। हाँ, ये हमें अगर सामने अगर हम देखने जाए तो हमें ये लग सकता है कि उसकी जिंदगी अलग है आपकी जिंदगी में, तो खैर सबको लगता है कि हमारी जिंदगी में तो भाई कितने सारे डिफिकल्टीज है, बट ऐसी बात नहीं होती। हालांकि बात ये होती है कि हर इंसान के लाइफ में अपनी अपनी स्ट्रगल उनकी होती ही है। ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान बहुत ज्यादा पैसे वाला है तो उसके लाइफ में डिफिकल्टीज कम आएंगी या फिर वो कम उसको कुछ बातें सहनी पड़ेंगी, नहीं ऐसे नहीं होता। सबके जिंदगी में जो डिफिकल्टी लेवल है वो समान तरीके से होती है। ओके, चलते हैं आगे। इट मीन्स अदर पीपल लाइक अस हैव ऑल्सो सीन गुड डेज एंड बैड डेज। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हर इंसान के जिंदगी में अच्छे अच्छे दिन भी आते हैं और बुरे दिन भी उसी प्रकार से आते हैं। दे ऑल्सो लाइक पीस एंड हेट वॉर्स, मतलब हर इंसान पीस जो है अपने लाइफ में शांति बनाए रखना चाहता है और हर इंसान जो है युद्ध को या फिर उसके बाद में जो इफेक्ट होते हैं युद्ध के, आफ्टर आफ्टर वॉर इफेक्ट्स, वो रोकना चाहता है, वो उसको पसंद नहीं करता। देयर हैंड्स आर सिमिलर टू आर हैंड्स एंड इन देयर लाइंस वी रेड, मतलब कि उनके जो हाथ, उनके हाथों में जो उनकी लकीरें होती है वो भी सिमिलर होती है, बस अपने ही हाथों की लकीरों के हिसाब से, है ना। इट मीन्स दैट एज देम वी ऑल्सो वर्क हार्ड डू लेबर फॉर आर सर्वाइवल, देयर लेबर इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अस, सिमिलर टू अस वर्क टू फीड देम सेल्फ एंड देयर चिल्ड्रन, यानी कि हार्डशिप्स जो है हर इंसान की जिंदगी में वो इक्वल होती है। हर इंसान को जीवित रहने के लिए मतलब उसका जो जीवन का निर्व्यापन है वो करने के लिए काम करना जरूरी होता है, और ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान बस बैठ के उसको आराम से खाना खाने मिले या फिर उसका उसके बच्चों को भी कोई लाके मुफ्त का खाना दे, ऐसा तो नहीं होता। हर इंसान को अपनी लाइफ की स्ट्रगल जो है वो करनी ही पड़ती है, उसको कोई डिफरेंट नहीं होती ये चीजें, है ना। चलते हैं स्टेंजा नंबर 3 पे। रिमेम्बर दे हैव आईज लाइक आर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव इन द इन एवरी लैंड इन कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, यानी कि वी शुड रिमेम्बर ओवर हियर दैट अदर पीपल टू हैव आईज विच आर सिमिलर टू अस, विच वेक और स्लीप सिमिलर टू अस, दे ऑल्सो हैव अ स्ट्रेंथ विच कैन बी वन बाय लव एंड देर इज अ कॉमन लाइफ फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, वी ऑल फॉलो सर्टन थिंग्स लाइक ईटिंग, वर्किंग फॉर सर्वाइवल, क्राई एंड लाफ अकॉर्डिंगली, वी ऑल हैव सिमिलैरिटी इन आर बॉडी पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ दोज अदर बॉडी पार्ट्स, दिस इज वेरी सिंपल फैक्ट एंड वी ऑल कैन रियलाइज दैट वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड वी ऑल शेयर इक्वल ट्रेट्स। ये मैंने पूरा पैराग्राफ बच्चों जानबूझ के पूरा इंग्लिश में पढ़ा है, ये पूरा मतलब जो मतलब है इसका, ताकि आपको अभी समझने में इस आसानी हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल वर्ड्स यूज किए हैं, फिर भी मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगी। ओके, क्योंकि पूरे तरीके से इन डेप्थ हमें ये पोयम पढ़नी है, तो बच्चों हमें ये यहाँ पे रिमेम्बर करना चाहिए, हमें हमें याद होना चाहिए कि हमारी आंखें और उन लोगों की आंखें भी सिमिलर हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो चीजें देखते हैं वही चीजें वो लोग भी देखते हैं, और उनकी आंखों को भी उनके शरीर को भी उतनी ही स्लीप की, उतनी ही नींद की आवश्यकता होती है, उतनी ही रेस्ट की आवश्यकता होती है जितनी की हमको आवश्यकता होती है ना। और तो और सारे इंसानों को प्यार और अफेक्शन, मतलब लव एंड अफेक्शन जो है, केयर जो है, उसकी भी जरूरत होती है हमारी तरह से। मतलब कि बस हम ही ऐसे इंसान नहीं होते जिसको दुख होता है, दर्द होता है, या फिर जिसको प्यार चाहिए होता है अपनी लाइफ में अपनी फैमिली मेंबर्स की ओर से, ऐसा तो नहीं होता है ना। हर इंसान को उसी प्रकार से केयर करना जरूरी होता है, मतलब उसको लगता है कि मेरी भी उसी तरह से केयर हो जैसी बाकी इंसानों की हो रही है। तो दिस इज वेरी सिंपल फैक्ट एंड वी ऑल कैन रियलाइज दैट वी ऑल ह्यूमन बींग्स शेयर इक्वल ट्रेट्स, यानी कि हमारी जो जरूरतें होती हैं एक इंसान के तौर पे वो बहुत ज्यादा सिमिलर होती है बाकियों के हिसाब से, है ना। मतलब बाकी लोगों को जैसी जैसी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमने देखा कपड़ा, फूड, ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा कॉमन है। अगर आप इंटरनल, आप अगर देखो, आप इमोशनल जो नीड है, इमोशनल जो इंसानों की डिमांड है, वो अगर आप देखो तो वो भी एक तरीके से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, बहुत ही ज्यादा मैच होती है। जैसे कि अगर हम देखें कि नॉर्मल इंसान जो है, बच्चा जो होता है, उसको उतनी ही केयर की जरूरत होती है। अगर आप किसी और जाति का या फिर और धर्म का अगर आप बच्चा देखो उसी एज का, तो उसको भी उतनी ही केयर की जरूरत होगी, उतनी ही उसको मतलब अफेक्शन की जरूरत होगी। चलिए खैर छोड़िए बच्चे क्यों, बड़े भी लोग जो होते हैं, बुजुर्ग इंसान जो होते हैं, उनको भी तो उतनी ही केयर और अफेक्शन की जरूरत होती है ना, बाकियों की तरीके से। मतलब ऐसा तो नहीं होता कि उनकी डिमांड्स कुछ अलग है और आपकी डिमांड्स कुछ अलग है। तो वो अगर वैसे होता है तो फिर आप लोग डिफरेंट हो सकते हो, है ना। पर भगवान ने तो हमें ऐसा करके नहीं भेजा था। तो चलते हैं स्टेंजा नंबर 4 पे, देखते हैं हमारे पोएट हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। स्टेंजा नंबर 4, लेट अस रिमेम्बर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आर ब्रदर्स, इट इज आर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पोज बिट्रे कंडेम, रिमेम्बर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। तो यहाँ पे बच्चों एक डिफिकल्ट वर्ड सा लगा मुझे कंडेम, जिसका मैं आपको मतलब समझा दू। CONDEMN, कंडेम का मतलब है बच्चों किसी भी चीज को बहुत ही स्ट्रॉन्गली ज्यादा ओपोज करना। बिट्रे का मतलब है धोखा देना, ओके। और बच्चों डिस्पोजिस का मैंने आपको मतलब बताया था, आपको याद है बहुत ही शुरुआत में मैंने आपको डिस्पोजिस का मतलब बताया था, याद करिए। ओके, सो डिस्पोजिस का मतलब है किसी भी चीज को छीन के लेना। तो इसका मतलब क्या है, लेट अस रिमेम्बर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आर ब्रदर्स, इट इज आर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पोजेस बिट्रे कंडेम, रिमेम्बर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। यानी कि फ्यू पीपल टेल अस टू हेट अदर पीपल हु डू नॉट बिलोंग टू आर कम्युनिटी एंड फाइट अगेंस्ट देम। मतलब आप जब आप नॉर्मली देखो कि कोई इंसान, लोग ऐसे होते हैं जो लोग, मैं खैर किसी का नाम नहीं लूंगी, बट आप भी जानती हो कौन ऐसे लोग होते हैं जो हमें एक दूसरे के अगेंस्ट भड़काते हैं, मतलब कि जाति का दायरा देके या फिर रिलीजन का, धर्म का नाम लेके हमें बहुत सारे लोग ऐसे बांटते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करना होता है कि हमें हमारी जुडिशियल माइंड जो है, हमने हमारी सोच विचार हमने जान पर रखना चाहिए, और हमने ये डिसाइड करना चाहिए कि क्या जो लोग वो ये चीजें हमें सिखा रहे हैं, क्या वो लोग सही में सही बातें हमें सिखा रहे हैं या फिर कुछ गलत बातें वो हमें पढ़ा रहे हैं वो लोग, है ना। एंड इट इज फाइट अगेंस्ट देम बट इट इज आर ड्यूटी दैट वी शुड डिनाई सच आइडियाज, वी शुड कंडेम इट, वी शुड रिमेम्बर दैट वी आर वन हु टुक आर्म अगेंस्ट आर ब्रदर्स, वी आर द वन हु फाइट अगेंस्ट ईच अदर, वी शुड स्टॉप फाइटिंग अमंगस्ट अस। यानी कि हमने लड़ना तो चाहिए, लड़ना बहुत अच्छी बात है, पर हमने किसके अगेंस्ट लड़ना चाहिए बच्चों, हमने उस प्रवृत्ति के अगेंस्ट लड़ना है, उस इंसानों के अगेंस्ट, उस इंसानों के साथ भी नहीं, उनकी सोच के साथ खैर हमें लड़ना चाहिए जो हमें ऐसी बातें बताते हो, जो हमें धर्म पे, जाति पे हम लोग हमें डिवाइड करते हो। आपको यहाँ पे मैं रेफरेंस दूंगी, आपने आपकी हिस्ट्री क्लास में पढ़ा होगा कि 1905 में हमें हमारे हमारे प्यारे भारत को ऐसे ही डिवाइड करा गया था, और हमारे पूरे हिस्ट्री में भारत को 2 बार डिवाइड करा गया था। पहली बार तो 1905 यानी कि 1905 में, जब हमारे बंगाल का डिवीजन हुआ था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल करके, हिंदू मुस्लिम के नाम पे हमें डिवाइड किया गया था। उसके बाद एक और बड़ा, दुनिया का सबसे बड़े पार्टीशनों में एक माना जाता है, जो कि धर्म के नाम पर किया गया था, और वो था इंडिया और पाकिस्तान, यानी कि भारत और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो है वो दरार लाई गई थी। किसके नाम पे, बस रिलीजन के नाम पे वो दरार लाई गई थी। और वहां आपने पढ़ा भी होगा कि उसके बाद में कितनी ज्यादा हिंसा बढ़ गई थी देश में हमारे, है ना। तो ऐसी ज्यादा जो चीजें हैं, जो बुरी चीजें होती हैं, जो हमें रक्तपात देखने को मिलती है, हेट या फिर वॉयलेंस हमें देखने को मिलता है, तो वो सारी चीजें बच्चों बुरी होती है। और वो चीजें ऐसे लोग वो ही करते हैं जिनका उसमें सेल्फिशनेस हो, है ना। उनको ऐसे लोग जो हमें डिवाइड करते हैं नाम पे, मतलब ऐसे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, उनका एक सेल्फिश मोटो होता है उसके पीछे, और वो होती है सत्ता। वो हम पे सत्ता करना चाहते हैं, वो हम पे राज करना चाहते हैं, और इसी वजह से वो लोग हमें डिवाइड करने के बारे में सोचते हैं। जैसे कि हमने देखा था 1905 में, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे, फॉरेनर्स, उनको हम पे राज्य करना था, इसलिए उन्होंने क्या किया, नाम तो हमें हमें बताया तो गया कि हम लोग आपको खैर एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे, मतलब अच्छे से हमें राज्य करने को मिले, इसलिए हम ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल कर रहे हैं। पर हालांकि उनको क्या करना था, हिंदू मुस्लिम में उनको फूट लानी थी, उनमें दरार लानी थी, इसलिए उन्होंने ऐसे कर्म किए। तो हमें यहाँ पे ये करना चाहिए, हमने क्या करना चाहिए, उनसे हमें नहीं लड़ना है, उस इंसानों से नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि हमें उनकी सोच से लड़ना चाहिए। और हम क्या सोच से कैसे लड़ेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, उनकी जो सोच हमें जो बताती है कि ये सारी बातें जो हैं सही हैं, जो भी हमें आपको बता रहे हैं कि डिवीजन अच्छा है, ये कोई धर्म है, ये कोई जाति है, उसके लोग बुरे हैं, ये लोग जब भी हमें ऐसी बातें पढ़ाते हैं, तब हमने क्या करना है, हमने अपनी विचार सोच विचार को अच्छे से काबू में लाके हमने ये डिसाइड करना है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत। और जो चीज गलत है उस चीज को हमने स्ट्रांगली जो है डिस्पोज करना चाहिए, मतलब हमारे दिमाग से उस बात, उनके दिमाग से, मतलब जो हमें ये बातें पढ़ा रहे हैं उनकी दिमाग से ये चीजों को मतलब निकाल के फेंकना है, बिट्रे करना है हमें उनको, मतलब ऐसे विचार जो हमें देते हैं उनको हमें, उनसे हमने दूर भागना है, उनको अपने पास बिल्कुल भी नहीं लाने देना है। कंडेम का मैंने आपको मतलब बताया था कि बहुत ज्यादा उनको हमने ओपोज करना है, उनकी सारी जो ऐसे सोच विचार है ना उनको हमने बहुत ही ज्यादा ओपोज करना है, और अपनी बातों की जो सच्चाई है उनकी, उन्हें सिद्ध करना चाहिए हमने। ओके, आते हैं स्टेंजा नंबर 5 पे, जो कि आखिरी स्टेंजा है। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आर हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आर ओन, रिमेम्बर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। यानी कि इस आखिरी जो स्टेंजा है उसमें पोएट हमें कह रहे हैं कि इट इज द ह्यूमन बींग्स हु मेक द अर्थ डर्टी बाई हेट अगेंस्ट ईच अदर, बाई फायर्स ऑफ वॉर्स वी डिस्ट्रॉय आर इनोसेंस। यानी कि जो इनोसेंस, मतलब जो निष्पापता है, वो हम लोग मतलब इंसान ही डिस्ट्रॉय करे जा रहे हैं, मतलब अपने अंदर हमने इतनी ज्यादा नफरत भरी हुई है कि उस नफरत के चलते हमने बहुत बड़े बड़े जो है वॉर्स, यानी कि बहुत बड़े बड़े बैटल्स को, बहुत ही बड़े बड़े युद्ध को हमने जन्म दिया है, और उसी वजह से हेट्रेड जो है, मतलब कि जो नफरत जो है, वो हमने अपने दिमाग में, अपने दिलों में इस कदर भरी हुई है कि हमने हमारा निष्पापता जो है वो कहाँ कहीं तो खो दी है, हमने उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है ना। और आगे जाके पोएट हमें कहते हैं, वी फिल द एयर विद डस्ट एंड डर्ट, यानी कि हम लोग जो, हमने ये जो हमारी पूरी अर्थ है, हमारा प्यारा जो प्लेनेट है, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर लिया है। किस लिए? ताकि हम लोग उसको किसी न किसी को, हमें ये लगता है कि सुपर पावर हमने करना चाहिए, किसी ना किसी को, किसी के ऊपर हमने होना चाहिए, और इसी विचार से हमारे अंदर नफरत भरी हुई है, और इसी विचार को चलते, इसी विचार को बढ़ावा देते हुए हमने हमारे प्यारे जो प्लेनेट है अर्थ, मदर अर्थ, उसको डिस्ट्रॉय कर रखा है। द एयर इज आर्स, वी आर नॉट सपोज टू मेक इट डर्टी। मतलब कि ये जो हवा है वो हमारी ही तो है ना। आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आपने देखे होंगे कि कितना धुआं फेंकते हैं वो लोग, पर वो लोग ये नहीं समझते कि अरे ये तो हवा जो है वो हम ही तो ब्रीथ करेंगे, ये कहाँ जाएगी हवा जाके, है ना, वो तो हमारे पास ही रहेगी। हमने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपना जो गंदा पानी है वो नदियों में छोड़ते हैं या फिर वो समंदर में छोड़ते हैं, बट उसको ये नहीं, उन लोगों को पता होता कि अरे ये पीने का पानी जो है वो आगे जाके हमारे ही घरों में तो आएगा वापस से, हम लोग तो और कोई मतलब और कहीं के कहीं किसी ग्रह से तो हमें पानी नहीं आएगा, है ना। जो मछली हम लोग खाएंगे उसी जल से, मतलब उसी जल में जो मछली पनपती है, जब हम उसको खाएंगे तो उस मछली ने भी तो उतना ही जहर खाया होगा जैसा कि आपने वहां पे उसमें भेजा होगा, है ना, आपके इंडस्ट्रीज में से आपने जो केमिकल्स उस नदी में डाले होंगे या फिर समंदर में डाले होंगे, वही वो मछली खाएगी और वही आपके फिर प्लेट में आ जाएगी, है ना, आपके खाने में आ जाएगी। तो जो मतलब ये है कि हम जो लोग, जो भी चीजें, जो भी गंदी चीजें हम इंसान जो फैलाते हैं, वही वापस से टर्न होके, रुख लेके हमारे ऊपर आती है, हमारे साथ आती है ना, हमारे सामने आ खड़ी होती है। तो एक बहुत ही बच्चों फेमस कहावत है कि कर्मा, यानी कि हम लोग जो करते हैं वो बहुत ही बुरी चीज होती है, मतलब कर्मा हिट बैक्स अगेन, ऐसी ये कहावत है जिसको, ये हमें जिससे पता चलता है कि हम जो भी चीज करते हैं वो वापस से हमें मिल जाती है, कि जो जो बीज हम बोते हैं वो ही हमें वापस से मिल जाते हैं। वी शुड रिमेम्बर दैट नो मैन आर फॉरेन टू अस एंड नो कंट्री स्ट्रेंज फॉर अस, वी ऑल आर इक्वल। यानी कि आखिर की लाइन में पोएट हमें ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि जो सामने वाला इंसान है वो गलत है या फिर वो अलग है हमसे। हमने यही बस मन में अपने दिमाग में से रखना चाहिए कि जो सामने वाला इंसान है वो मेरे जैसा ही है, उसकी जरूरतें मेरी जरूरतें, बहुत ही सिंपल है। और इसी तरीके से बच्चों हमें हेट्रेड जो है यानी कि नफरत फैलाना बंद करना चाहिए और अच्छे से प्यार से अच्छे प्रॉपरली हमें इस दुनिया में रहना चाहिए। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास स्टूडेंट्स। टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।